जयो राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, जयो राधा माधव कुंज बिहारी, जयो राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी रावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गिरधारी राधा गिरधारी राधे राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजाकाचार्य अष्टोत्तर छठ श्री श्रीमती श्रीमानगिरि तेसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की इस्कॉन संस्थापक आचार्य सेवियर ऑफ द होल्ड वर्ल्ड श्री प्रभुपाद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गिराधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की समवेद भक्त वृंद की ऑल ग्लोरी टू असेंबल्ड डिवोटीज All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Guru and Gauranga Srila Prabhupada ki. So, aaj hum Srimad Bhagavatam ke Navam Skand ke chauthe adhyay ka inka shirshak hai. दुर्वासा मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज का अपमान श्लोक संख्या नंबर 26 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीव्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरा भवति नैष्टिकी श्रीमद्भागवतम नवम स्कंद चौथा अध्याय श्लोक संख्या नंबर 26 कृपा करके मेरे पीछे इन श्लोकों को उच्चारण करिए सैत्थम भक्ति योगेना सैत्थम भक्ति योगेना तपो युक्तेना पार्थिव तपो युक्तेना पार्थिव स्वधर्मेना हरिं प्रीणन् स्वधर्मेना हरिं प्रीणन् सर्वान् कामान् शनैर्जहु सर्वान् कामान् शनैर्जह। स्वैत्तं भक्ति योगेन तपोयुक्तेन पार्थिवः स्वधर्मेन हरिं परिनन्। सर्वान् कामान् शनैर्जहु। स्वैत्तं भक्ति योगेन तपोयुक्तेन पार्थिवः स्वधर्मेन हरिं परिणन्। स्वधर्मेन हरिं प्रीणन्। सर्वान् कामान् शनैर्जहु। माता जी, शब्दार्थ इस प्रकार है। वह अम्बरीश इत्थम इस प्रकार भक्ति योगेना भगवान की भक्ति के द्वारा तप युक्तेना जो तपस्या की श्रेष्ठ विधि भी पार्थिव राजा स्वधर्मेण अपने वैदिक कार्यकलापों से हरिम परमेश्वर को प्रेरणन संतुष्ट करते हुए सर्वन सर्वान सभी प्रकार की कामना भौतिक इच्छाओं को शनै धीरे धीरे जहो त्याग दिया। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमत ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्लोक प्रभुपाद जी के द्वारा श्लोक प्रभुपाद की अनुवाद। इस तरह इस लोक के राजा महाराज अम्बरीश ने भगवान की भक्ति की और इस प्रयास में उन्होंने कठिन तपस्या की। उन्होंने अपने वैदिक कार्यकलापों से भगवान को सदैव प्रसन्न करते हुए धीरे धीरे सारी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया। तात्पर्य प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, भक्ति के अभ्यास से कठिन तपस्या कई प्रकार की होती है। उदाहरणार्थ मंदिर में अर्च्य विग्रह की पूजा में श्रम साध्य कार्य करने होते हैं। श्री विग्रहारा धननित्यनाना श्रृंगार तन मंदिर मर्जनादो। मनुष्य को अर्च्य विग्रह को अलंकृत करना चाहिए, मंदिर साफ करना चाहिए, गंगा तथा यमुना से जल लाना चाहिए, नित्य कर्म करते रहना चाहिए, कई बार आरती करनी चाहिए, अर्च्य विग्रह के लिए आकृष्ट भोजन तैयार करना चाहिए, वस्त्र तैयार करने चाहिए आदि आदि। इस तरह विविध कार्यों में सदैव लगे रहना चाहिए। इसमें जो श्रम लगता है वह निश्चय ही तपस्या है। इस प्रकार प्रचार कार्य करने, साहित्य तैयार करने, नास्तिकों को उपदेश देने तथा द्वार द्वार जाकर साहित्य बांटने में जो कठिन श्रम निहित रहता है वह तपस्या तपोयुक्तन तपोदिव्यम पुत्र का, ऐसा तपस्या आवश्यक है। ये न सत्वम शुद्धेते, भक्ति में ऐसी तपस्या से मनुष्य इस संसार से पवित्र हो जाता है। कामनाएं क्षणैर जहु, निसंदेह ऐसी तपस्या से भक्ति की स्वाभाविक स्थिति प्राप्त होती है। इस तरह मनुष्य अपनी भौतिक इच्छाएं त्याग सकता है और जो ही वह भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है वह जन्म जरा मृत्यु तथा रोग की पुनरावृत्ति से छूट जाता है। होम ज्ञान नतिमिरंदस्य ज्ञानांजन शलाके श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप ग्रामयम ददापि स्वपदांतिकम। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतपद कमलम श्री गुरु नमस्नुमांश श्री रूपम साग्र जातम सहगण रुग्णातांबितम तम सजीवम साधवैतम साधवदूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुधे देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतृभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहां पर वर्णन किया गया अम्बरीश महाराज किस प्रकार अपने सारे विषयों का परित्याग करते हुए वो पूर्ण तरह एकमात्र एक ही कुरुनंदना भगवान के भक्ति में एकाग्रता को प्राप्त किया। तो जैसे बताया गया चैतन्य चरितामृत में, बहुजन्म ताकिले भाग्य विषय छाड़ी होए वैराग्य, बहुत जन्म के बाद व्यक्ति के हृदय में इस प्रकार की भावना उत्पन्न होती है कि वो अपने सारे विषयों को त्याग देता है और उनके हृदय में विरक्ति उत्पन्न होती है। तो यहां पर अम्बरीश महाराज जो दिखाई पड़ रहा है कि किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में विषयों का उन्होंने परित्याग किया। तो विषय को कैसे परित्याग किया, तो यहां पर कहा गया है कामना शनैर जहु। ये जो कामना शनैर जहु, यानी कि अपने हृदय में जो कामनाएं थे वो ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे उसका उन्होंने परित्याग किया। यानी कि जब भी विषयों का परित्याग करना है तो उसे भक्ति की तपस्या में लगते हुए उसे धैर्यपन रखना है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं उत्साह निश्चय धैर्यात्। ऐसे वो जो धैर्यपन अगर किसी के हृदय में है तो भगवान की भक्ति करने के लिए जो उत्साह है वो उत्साह को छोड़ेगा नहीं। तो इस प्रकार अगर उत्साहित या धैर्यपन नहीं रहेगा तो वो व्यक्ति कामनाएं परित्याग जल्द से नहीं होगा तो हो सकता है कि उसका उत्साह भी खत्म हो जाए। लेकिन यहां पर धैर्य पूर्वक अम्बरीश महाराज ने अपनी कामनाओं का परित्याग किया। जैसे रामायण में वर्णन आता है कि किस प्रकार वशिष्ठ मुनि और अम्बरीश महाराज का जो आपस में जो लेन देन जो था उस वार्ता में, उस इतिहास में किस प्रकार विश्वामित्र मुनि ने अपनी कामनाओं को धीरे धीरे उन्होंने परित्याग किया। तो बताया जाता है कि जब विश्वामित्र मुनि वशिष्ठ मुनि के पास गए थे तो वशिष्ठ मुनि जंगल में रहते थे, तो उनसे उनके पास जब गए थे तो विश्वामित्र मुनि अपने सारे सेनाओं के साथ गए थे। तो जब सेनाओं के साथ गए तो वशिष्ठ मुनि ने उस सारी सेनाओं के साथ में राजा को भी सुंदर भोजन खिलाया। और ये जब विश्वामित्र मुनि ने देखा कि जंगल में इतना सुंदर फीस्ट कहां से आया, तब पता लगा कि वशिष्ठ मुनि के पास कामधेनु गाय है और वो कामधेनु गाय वो जो भी कुछ इच्छा करे वो सारी इच्छा को पूर्ति करता है। तो विश्वामित्र मुनि ने विचार किया अब कुछ जीवन में करना है तो ये इसी को ही उठा लेना है। और उन्होंने कामधेनु गाय को ही उठा लेने के लिए उन्होंने भरपूर प्रयास किया, लेकिन कामधेनु गाय जो कि इच्छा जो भी है वो सारी पूर्ति करते, तो उनकी इच्छा से ही अनेक अनेक सेना उनके शरीर से प्रकट हुए और सारे सेनाओं ने विश्वामित्र मुनि के साथ में उनकी सारी सेनाओं को भी परास्त करके भगा दिया। तो विश्वामित्र मुनि ने सोचा कि कुछ और करना होगा और विश्वामित्र मुनि ने तपस्या किया और तपस्या से उन्होंने छत्र बल प्राप्त किया शिव जी को प्रसन्न करके। तो शिवजी प्रसन्न होकर छत्र बल दिए और उन्होंने छत्र बल लेकर वशिष्ठ मुनि को एकांत में उन्होंने आक्रमण किया। लेकिन वशिष्ठ मुनि जो कि जिनके पास ब्रह्म दंड है, तो ब्रह्म दंड के सामने जब छत्र बल आता है तो किसी काम का नहीं होता और इस तरह ब्रह्म दंड के सामने वो छत्र बल परास्त हो गया। तब ये देखकर वो फिर से निराश हो गए, फिर से उन्होंने तपस्या किया। अब तपस्या किस भावना से कर रहे थे कि मुझे कुछ नियंत्रण में लाना है, मुझे कुछ कर दिखाना है। और ऐसे करकर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और कई वर्ष तक प्रसन्न करकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर उनको राजा से राज ऋषि का पदवी दे दिया। तब विश्वामित्र मुनि जो कि राजा से राज ऋषि पदवी में आ गए और उसी समय त्रिशंकु का घटना घटा था। तो त्रिशंकु आए थे वशिष्ठ मुनि के पास और कहा कि मुझे स्वर्ग भेज दो। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा जब तक कोई पुण्य अर्जित नहीं करता तब तक वो स्वर्ग नहीं जा सकता। तो इन्होंने बहुत जिद किया, उन्होंने मना किया तो उनके शिष्य के पास गए तो उनके शिष्य ने भी कहा मेरे गुरु ने मना किया तो मैं कैसे करूं। तब इनको पता लगा कि वशिष्ठ मुनि का विश्वामित्र मुनि के साथ कुछ लेन देन में कुछ गड़बड़ है, तो इसलिए उन्होंने उनके पास जाकर उनका शरण लिया और विश्वामित्र मुनि को कहा कि आप मुझे सहयोग करो। जबकि वशिष्ठ मुनि ने मुझे सहयोग नहीं किया और कहा कि तुम चांडाल बन जाओगे, ऐसे कह दिया, तो आप मुझे सहयोग करो। तब इन्होंने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें स्वर्ग भेजता हूँ और उन्होंने अपनी तपस्या के बल से उनको स्वर्ग भेजे और त्रिशंकु को ऊपर की गति की ओर भेज रहे थे। जब वो इंद्र को पता लग गया कि बिना योग्यता से बिना वीजा से वो स्वर्ग में एंट्री मार रहा है, तो इसलिए तुरंत ही इंद्र ने भी अपनी शक्ति से उनको वहीं रोक दिया और त्रिशंकु बीच में अटक गया। पहले तो श्री शंकु के पास तो जमीन तो था, अभी जमीन भी काम नहीं है और इस तरह वो बीच में अटक गए और वो पछतावा करने लगे क्या हो रहा है। और इतने में ये देखा जब विश्वामित्र मुनि ने तो कहा कि चिंता मत करो मैं दूसरा स्वर्ग बनाता हूं, और विश्वामित्र मुनि ने अपनी शक्ति से वो दूसरे स्वर्ग का निर्माण किया और उस स्वर्ग में उस त्रिशंकु को रख दिया। लेकिन अब विश्वामित्र मुनि की सारी जो शक्ति थी वो क्षीण हो गई, फिर से उन्होंने तपस्या किया। अब देखिए वो कैसे क्रमानुसार प्रगति कर रहा है। और फिर से उन्होंने 60,000 वर्ष तक तपस्या की और जिस तपस्या से उनको राजा से राज ऋषि का पदवी मिल गया, ब्रह्मा जी ने उनको राज ऋषि से वो ऋषि के पदवी में पहुंच गए, तो ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर ऋषि का पदवी दे दिया। अब इस समय इंद्र को घबराहट हुआ कि ये कहीं मेरी पदवी को ना ले ले, इसलिए इंद्र ने मेनका को भेजा और जब मेनका के झुनकार की आवाज सुनते ही यहां पर विश्वामित्र मुनि अपनी तपस्या से गिर पड़े और पुनः उनको पछतावा हुआ और पछतावा के पुनः उन्होंने तपस्या की और फिर से उन्होंने भयंकर तपस्या की और जिस तपस्या से वो ऋषि से महर्षि बन गए और महर्षि के पदवी में आ गया। अब जब महर्षि के पदवी में आए तो यहां पर इस समय इंद्र ने रंभा को भेजा, तो रंभा आई तो उनको पता लग गया कि इनका तो काम यही है कि मेरी तपस्या को भंग करना, तो इसलिए बड़े क्रोधित हो गए और बड़े क्रोधावेश में उन्होंने अपनी दृष्टि को खोला तो जिनकी दृष्टि से अग्नि प्रकट हुई जिनसे उनका वो जो शरीर था वो जलकर राख हो गया। और इस तरह यहां पर विश्वामित्र मुनि फिर से पछतावा किए, पहली बार मैं गिर पड़ा काम के कारण, दूसरी बार मैं गिर पड़ा क्रोध के कारण। फिर से उन्होंने भयंकर तपस्या की, अब उन्होंने उपवास किया 40 दिन तक उन्होंने भयंकर उपवास की और जिस उपवास में उन्होंने उपवास जब तोड़ने का जब समय आया तो वो जब पारण कर ही रहे थे उसी समय इंद्र वहां पर अपने रूप को बदलकर उनके समक्ष आ गया और कहा मुझे भी भूख लगा है। तब यहां पर विश्वामित्र मुनि उनको वो भोजन दे देते और उस परीक्षा में पास हो जाते, तो ब्रह्मा जी और प्रसन्न हो जाते और महर्षि से ब्रह्म ऋषि का पदवी दे देते। और इस तरह विश्वामित्र मुनि ब्रह्म ऋषि तक पहुंच जाते हैं क्रमानुसार और तब जाकर उनको प्रभु रामचंद्र जी की सेवा का अवसर प्राप्त होता है जिससे उनकी भक्ति यानी कि उनकी जो बुद्धि है वो स्थिर होती है और इस तरह वो भक्ति में संलग्न होते हैं। तो ये महत्वपूर्ण यहाँ पर शिक्षा है कि किस प्रकार विश्वामित्र मुनि के जीवनों से हम देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने क्रमानुसार अपने जीवन में विषयों का परित्याग किया। तो तीसरे स्कंद में जहां पर वर्णन किया जाता है कपिल मुनि अपने माता देवहूति को समझाते हैं कि कैसे विषयों को परित्याग करना है, तो वो कहते हैं भुक्त भोगा परित्यक्ता दृष्ट दोषस्य नित्यस्य, नैश्वरस्य अशुभम दत्ते समहिम निशितस्य च। वो कहते हैं कि जब विषय भोग को अगर त्यागना है तो उस विषय भोग के दुष्परिणाम के विषय में सोचना चाहिए निरंतर, और उस दुष्परिणाम के विषय में निरंतर सोचते रहेंगे कि ये कितना घातक है। दृष्ट दोषा च नित्यस, उनके दुष्ट परिणाम के विषय में सोचेंगे तो क्या होगा, नैश्वर्यम अशुभम दत्ते, उसको बड़े आसानी से वो उसको परित्याग कर सकता है। समहिम्नि स्थितस्य च, वो अपने वापस स्थिति में आ जाता है, यानी कि पुनः वो अपने स्वरूप में आ जाता है, वो है जीवेर स्वरूप है कृष्णर नित्यदास, इस स्वभाव को प्राप्त करता है। जब रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में जहां पर वर्णन आता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी जब श्री चैतन्य महाप्रभु से भेंट करने के लिए गए, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने मात्र से वो हर्ष उल्लासित हो गए, और उनका एकमात्र मन में यही विचार था कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में जुड़ जाऊं। और इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आकर जय श्री श्री राधा गिरधारी भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्र, श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आकर उन्होंने कहा कि मुझे आप अपना सेवक बना लो, अपने आंदोलन में मुझे जोड़ लो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम वापस अपने घर चले जाओ, और उनको क्या कहा तो कहते हैं क्रमे क्रमे पाइलोक भव सिंधु पुल स्थिर गरे राहिय न हय भतु। तो कहने लगे क्रम क्रम पाइलोक भव सिंधु पुल, क्रम क्रम अनुसार धीरे धीरे तुम घर पे रहो, और घर पे रहते हुए धीरे धीरे तुम अपने हृदय में विरक्ति को उत्पन्न करो, और जब इस तरह जब विरक्ति जब परिपक्व हो जाएगी तब तुम बड़े आसानी से इस भव सागर को पार लगा सकते हैं। तो इस प्रकार यहां पर जो अम्बरीश महाराज जिन्होंने अपने जीवन में इस विषयों का परित्याग किया, कामना शनैर जहु, तो उस वो कैसे वो संभव हुआ, तो कहते हैं तपोयुक्तेना, उन्होंने किस प्रकार ये कार्य किए तपोयुक्तेना, तो वो कौन सा तपस्या के द्वारा उन्होंने अपने जीवन में ऐसे विषयों का धीरे धीरे परित्याग किया, तो वो कौन सी तपस्या, ऐसे तो तपस्या सभी करते हैं। दशम स्कंद में जहां पर देवतागण प्रार्थना करते हैं कि किस प्रकार मायावादी लोग कितनी भयंकर तपस्या करते हैं, लेकिन उसकी तपस्या का परिणाम क्या है, तो कहते हैं ये न अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना त्वयस्त भावत अविशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृत्येना परम पदम तथा अनारित पतंती अनारित युष्मत अंग्रिया। तो वैसे जो जीव जो कि भयंकर तपस्या करते हैं, इनका अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना, पहले तो शुरू में वो अरविंद के भक्ति के रूप में स्वीकारने के लिए साकार रूप में वो स्वीकारते हैं, और फिर उसके बाद उनको परित्याग कर देते और कहते कि निराकार है विमुक्त मानिना, और अपने आप को ऐसे मानते कि अब मैं मुक्त हो चुका हूं। तो अस्त भावात, उनकी जो भावना है वो पूरी तरह अस्त हो जाती है, सूर्यास्त होकर किरण नहीं दिखती है, इसी प्रकार उसकी भावना पूरी तरह अस्त हो जाती है, भगवान के प्रति कोई भावना ही नहीं रहती है। अविशुद्ध बुद्धया, उनकी बुद्धि पूरी दूषित हो जाती है, अविशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्चेना परम पदम तथा, वो इतने तपस्या करके इतने ऊंचे गति को भी प्राप्त किया है, वहां से भी पतंती अधर, वो गिर पड़ता है, और उनके जो सारे आध्यात्मिक उन्नति क्षण भर में खत्म हो जाती है, ऐसी तपस्या का क्या लाभ। जबकि देवतागण एक भक्त के विषय में कहते हैं, और भक्त के विषय में क्या कहते, तथा न ते माधव ताव का क्वचित ब्रश्यंती मार्गाति त्वयि मयि बद्ध सहृदा त्वया भी गुप्ता विचरंती निर्भया विनायकानि कफ मूर्धसु प्रभु तो कहते हैं कि एक भक्त अगर वो शुरू में भक्ति में लगा है और एकाएक भक्ति छोड़ दिया, ब्रश्यंती मार्गाति, उसकी एक भक्ति का जो मार्ग छूट गया है, तत्पर भी वो व्यक्ति विचरंती निर्भया, वो जो व्यक्ति भक्ति में लगा है और भक्ति छूट जाता है, फिर भी वो घूमता फिरता कैसे निर्भया, बिना कोई भय से। और इसीलिए यहां पर देवतागण कहते हैं कि वैसा भी भक्त अपने सारे संकटों को लांग देता है, और वैसा भक्त जो अधूरा भक्ति छोड़कर किसी और कार्य में लग गया है, वैसा भक्त भी ऐसे मायावादी जो कि इतनी भयंकर तपस्या किया उनसे श्रेष्ठ है। तो एक गिरा हुआ भक्त मायावादी के एकदम उच्च स्तर पर पहुंचा हुआ व्यक्ति से भी श्रेष्ठ माना गया। इस प्रकार देवतागण बता रहे कि वास्तविक तपस्या कुछ है तो वो यह है। वो क्या है? तो कहते हैं भक्ति योगेना। यहां पर जो शब्द उपयोग किया गया है, स इत्थम भक्ति योगेना, भक्ति योग के द्वारा जो तपस्या है वो वास्तविक में महत्वपूर्ण है। तो तपस्या कैसी होनी चाहिए? भक्ति योग के साथ। जैसे गजेंद्र अठम स्कंद में प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, नमो नमस्तुभ्यम असाय वेगम शक्ति त्रयाय अखिल धीय गुणाय प्रपन्न पालाय दुरंत शक्ते कत इंद्रियानाम अनवाप्य वर्तमने। तो कहते हैं नमो नमस्तुभ्यम असाय वेगम। गजेंद्र प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि हे भगवान, ये जो वेग है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये सारी अनेक अनेक प्रकार के वेग हृदय में जो अनर्थ है, असाय, इसको सह नहीं पा रहा हूं, इसको क्या कहते हैं, दुरंत शक्तिया, इसको पार करना दुष्कर है। मैं कोई भी व्यक्ति अपनी निजी शक्ति से इस वेग को पार नहीं कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं, कत इंद्रियानाम, क्योंकि असंयमित इंद्रिय होने के कारण, इंद्रिय वशीभूत न रहने के कारण आप भी प्राप्त होना मुश्किल है। इसलिए गजेंद्र क्या कहते हैं, योगरंधित कर्माणु, योगरंधित कर्माणु ऋधि योग विधा विधविते विधाविते। तो कहते हैं योगरंधित कर्माणु, रंधित, रंधित यानी कि पकाना या कुकिंग करना। तो योग रंधित कर्माणु, जो हृदय में जो कामनाएं हैं, उस कामनाओं को तुम क्या करो, पूरी तरह उसको बॉईल कर दो, यानी कि पूरी तरह उसको जला दो। और कैसे? योग, भक्ति योग की शक्ति से या भक्ति योग के विधि से, उस भक्ति योग की तपस्या से, जो कि हृदय में जो कामनाएं हैं, उस कामनाओं को पूरी तरह बॉईल कर दो। और जब इस प्रकार, जब उस कामनाओं को जब आप पूरी तरह पका दोगे, तो बुद्धि जो है आपकी भक्ति में स्थिर हो जाएगी। तो इस प्रकार जो भक्ति एक ऐसी वस्तु है कि भक्ति का एक थोड़ा सा भी अगर कोई स्वाद ले लेता है, तो भले ही वो व्यक्ति भक्ति को छोड़ने का प्रयास भी करे, लेकिन उससे नहीं छूट पाएगा। ये भक्ति का रस इस प्रकार है। जैसे लंदन में एक व्यक्ति था, वो ट्रेन से प्रवास कर रहा था, तो हुआ क्या कि ऊपर कुछ सामान रखा था, तो सामान एक व्यक्ति निकालते वक्त वो सीधा धड़ाम करके उसके सर पे गिर गया, और जैसे ही गिरा तो ये बेचारा याददाश्त खो दिया, ये भूल गया कि ये कौन है, और ये अकेला था, इसको मार्ग बताने वाला भी कोई नहीं था। तो इन्होंने देखा, आसपास लोगों से पूछने लगा, मैं कौन हूं? तो ये आसपास वाले भी व्यक्ति हैरान होंगे, तो कोई कुछ बोला नहीं। तो प्लेटफॉर्म आया, तो प्लेटफॉर्म देखा, तो प्लेटफॉर्म में उतर गया और उतरा तो लोगों से पूछने लगा, मैं कौन हूं? तो वहां पर एक भगवद गीता बेचने वाला एक इस्कॉन डिवोटी था प्लेटफॉर्म में, और वो कह रहा था, भगवद गीता लीजिए और जानिए कि आप कौन हैं, लीजिए भगवद गीता। तो ये सीधा उसके पास गया, और कहने लगा कि मैं जान पाऊंगा मैं कौन हूं। बोला हाँ आप जान पाओगे, इसमें स्पष्ट लिखा है, तो जरा बताइए कि मैं कौन हूं। तो इन्होंने कहा आपको विस्तार से जानना है? हाँ जानना है, तो चलो मेरे साथ। अब इस्कॉन के भक्त को तो केवल इंतजार है कि कौन आ रहा है साथ में, तो चल दिया। अब उसको लेकर गए सीधे मंदिर में, मंदिर में लेकर गए, सर मुंडा कर बिठा दिया जप माला लेकर, और ये जप वगैरह रोज करने लग गया। बोला तुम यही हो जिवेरे स्वरूप हो कृष्ण आदित्य दास। और तब से वो भजन करना शुरू कर दिया। 6 महीना बीत गया, सेवा वगैरह करता था, भक्ति वगैरह करता था। एक समय की बात थी कि वो कुकिंग कर रहा था भगवान के लिए, और जब कुकिंग कर रहा था तो कुछ काट रहा था, तो कुछ बटाटे का थैली था वो सीधा उसके सर पे धड़ाम करके गिर पड़ा। अब जब गिरा तो उसे कुछ कुछ याद आने लगा, अरे मैं यहां क्या कर रहा हूं। वो फिर से गया आईने में जाकर देखा, अरे मैं कौन हूं। और तब उन्होंने पूछताछ किया तो वो भक्त जो था उसने पूरा डिटेल बताया। तो बोले तुम्हें मैंने प्लेटफॉर्म से लाया हूं। तब बोला ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब मुझे यहां आनंद आ रहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और वहीं पर ही भक्ति में लग गया। तो वैसे यहां पर एक भक्ति का एक थोड़ा सा अगर रस प्राप्त होता है तो व्यक्ति बड़े आसानी से परम दृष्टवानि वर्तते उस वस्तु को प्राप्त करते हैं। इसलिए कहा गया है विषय विनिवर्तन्ते निरहरस्य देहिना, रस वज्रम रसोप्यासा परम दृष्टवानि वर्तते। जब कोई विषयों को अपने जीवन से विलग रखता है, विषय विनिवर्तन्ते अपने से दूर रखता है, और साथ साथ में क्या केवल दूरी नहीं रखना है, साथ में उसके दुष्परिणाम के विषय में सोचते, नेगेटिव पॉइंट। विषय विनिवर्तन्ते निराह, निराह यानी कि उसके दुष्परिणाम, निराहरस्य देहिना रसवज्रम रसोप्यासा, ऐसे करने से उसको एक ऐसा रस प्राप्त होगा जो कि परम दृष्टवा, जो ऊपरी प्रकार का स्वाद है यानी कि भक्ति के स्वाद है, उस स्वाद से वो ऐसे विषयों को बड़े आसानी से पार कर सकता है। इसलिए भक्ति योग यही एकमात्र मार्ग है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सारे विषयों को परित्याग कर सकता है। अन्यथा कोई भी तप उसे अपने हृदय के विषयों को परित्याग करने के लिए सुयोग नहीं करता। हम देखते उदाहरण जो कि श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में सौबर्य मुनि का वर्णन आता है। सौबर्य मुनि कितने बड़े तपस्वी थे, यहां तक कि वर्णन किया गया है यमुना अंतर जल मग्न तपस्या मीन परम तप निवृत्त मीन राजस्य दृष्ट्वा मैथुन धर्मिना। तो कहते हैं यमुना अंतर जले मग्न, वो यमुना के अंदर बैठकर बिना कोई श्वास लेकर बिना पानी पिए भी वो केवल तप में लगा था 10,000 वर्ष तक। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने निवृत्त मीन राजस्य, वहां पर उन्होंने 2 मीन को संग करते हुए जैसे ही देखा तो 2 मच्छी को उन्होंने एक साथ देखते ही यहां पर सौबर्य मुनि के हृदय में भी कामना उत्पन्न हुई कि मैं भी जाकर विवाह करूं। तो तुरंत ही सौबर्य मुनि उस वेग को न सहते हुए वो तुरंत जल से बाहर आए और जात स्प्रियो नृपम विप्र वहां के एक राजा के पास गए, राजा मंदादा। और राजा मंदादा के पास जाकर कन्याम एकम याचते और एक कन्या को एक कन्या मुझे चाहिए विवाह के लिए, इस प्रकार उन्होंने याचना किया। तो राजा देखकर हड़बड़ा गया क्योंकि यहां पर सौबर मुनि का जो शरीर जो था वो पूरी तरह मच्छी ने खा लिया था, केवल हड्डी दिख रहा था, और सौबर मुनि के हृदय में अभी भी कामनाएं खत्म नहीं हुई थी। और यहां पर सौबर मुनि को ना बोल दिया जाए तो श्राप मिल जाएगा। तो राजा मंदादा भी हैरान हो गया कि करूं क्या। तो उन्होंने कहा मेरे पास एक पुत्री नहीं है, 50 पुत्री है, जो आपको हां बोलेगी उससे विवाह करो। तो यहां पर सौबर मुनि ने देखा कि राजा मंदादा मेरे इस शारीरिक अवस्था को देखकर विचलित हो चुके हैं, तो उन्होंने अपनी योग बल से, योग शक्ति से उन्होंने अपने शरीर को पुनः यौवन कर दिया। अब जब उन्होंने अपने शरीर को यौवन किया तो उनकी जो पुत्री थी 50, पचासों ने हाँ बोल दिया। देखो माया, एक साथ उनको हाफ सेंचुरी, तो 50 के साथ उन्होंने विवाह के लिए सहमत हो गया। और जब 50 के साथ विवाह के लिए सहमत हुए तो उन्होंने अपने आप को 50 में विस्तार किया योग शक्ति से। अब हर कन्याओं के साथ उन्होंने 10-10 पुत्रों को उत्पन्न कराया। और जब ऐसे कई वर्ष बीत गए तब सौभद्र मुनि को अकल आई कि अरे क्या हो रहा है, मेरा समय ऐसे ही बीतता जा रहा है। और तब सौभद्र मुनि बड़े पछतावा करते कहते हैं, अहो इमं पश्यते मे विनाशम, अरे मेरा क्या हो गया, मैं विनाश हो गया। तप से वीन सच्चरित्र वृतस्य, मैं बहुत अच्छी तरह तपस्या में लगा था, अंतर जले वारी चरा प्रसंगात, केवल जल के अंदर मच्छियों के प्रसंग को देखा, प्रचित्तम ब्रह्मचिरम, तो ऐसे जो स्तर जो था मेरा ब्रह्म का स्तर, वहां से मैं गिर पड़ा। और उसके पश्चात सौभद्र मुनि वापस जंगल में जाकर वानप्रस्थ लेते हैं, उनकी सारी पत्नियां भी वानप्रस्थ लेकर फिर से उन लोग भक्ति योग में लगते हैं। और जब भक्ति योग में लगते हैं तो सौभद्र मुनि अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। तो किस प्रकार सौभद्र मुनि, उन्होंने जब भक्ति योग को अनुकूल रूप में स्वीकारा, तो वैसा जब उन्होंने तपस्या किया तो उस तपस्या से उन्होंने अपने जीवन में सारे विषयों को परित्याग कर दिया। काम शनैर जहु, वो उस प्रकार करने में समर्थ हुए। तो भगवद गीता में कहा गया है 7वें अध्याय के श्लोक में कहते हैं, एषां तत्तंकतम पापम जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ति माम दृढ़व्रता। कौन व्यक्ति भगवान के भक्ति में दृढ़ता पूर्वक लग सकता है, तो उसके विषय में कहते हैं, तो कहते हैं एषां तो अंतगतम पापम, जब उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट होते। एषां तो अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणां, और उनके पुण्य का उदय होता है। जनानां पुण्य कर्मणां, तो जब पुण्य का उदय होता है और पाप पूरी तरह खत्म हो जाता है, तब क्या कहते हैं, वो व्यक्ति भजता दृढ़व्रता, वैसा व्यक्ति भजन को दृढ़ता पूर्वक कर सकता है। तो जब तक व्यक्ति के जीवन में सुकृति उत्पन्न नहीं होता या सुकृति जागृत नहीं होती, तब तक वो भगवान के भक्ति में पूरी तरह एकाग्रित नहीं हो सकता। तो यहां पर जो भक्ति योगे ना तप, ऐसे जो भक्ति योग की तपस्या से उसे क्या प्राप्त होता है, सुकृति प्राप्त होती है। और वो सुकृति क्या करती है, हरिम परिणन, तो हरिम परिणन, हरिम प्रीणन, हरिम प्रीणन यानी कि भगवान को प्रसन्न कर देता है, वैसा कार्य। तो हरि को प्रसन्न कौन करता है, ऐसे सुकृति जो कि भगवान और भक्त के संपर्क में कुछ सेवा की जाती है। तो ऐसे कई उदाहरण हैं, भगवान ने असुरों को भी ऐसी शक्ति दी, या असुरों को भी ऐसी सुकृति दी जिसके द्वारा वो भगवान का दर्शन कर पाए। जैसे उदाहरण दिया जाता है पुतना जो थी, वो आई थी भगवान को स्तन में जहर लगाकर उनको जहर पिलाने के लिए, लेकिन भगवान ने उनके जहर को भी पिया और साथ में उनको मोक्ष दिलाया, उनको मां की गति का स्थान दिया। तो कहते हैं पदभ्याम भक्त हृदय स्तभ्यम वंदाभ्याम लोक वंदित अंगम यश्य समाग्रम्य भगवान अपि तत् स्थनम। तो वो जो भगवान का जो चरण कमल पदभ्याम भक्त हृदय स्तंभ स्तभ्यम, जो भगवान उनके चरण कमल को निरंतर भक्त भगवान के चरण कमल को निरंतर स्मरण करते हैं अपने हृदय में, वंदाभ्याम जो कि पूरे देवी देवतागण 33 कोटि देवी देवतागण उनके चरणों में अपने प्रणाम करते हैं, वैसा चरण यहाँ पर पुतना को पुतना के स्तन को जोर से पकड़े हैं। अंगम यश्य समाग्रम्य और वैसा भगवान अपि तत् स्थनम, उन्होंने ऐसे कसकर पकड़ा और उनके सारे जो उन्होंने जहर दिया उस जहर को भी पिया और साथ साथ में उनको मां का भी स्थान दिया। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये पुतना जो कि जिन्होंने एक ढोंग किया कृष्ण को दूध पिलाने का, वैसा पुतना को मां का स्थान दिया, तो वो जो गोपगण जो गोपीगण जो कि स्वाभाविक रूप से कृष्ण को देखकर उनके स्तन से दूध झलकता है, वैसे गोपियों को क्या नहीं और बाकी ये देने का। तो वैसा यहां पर कृष्ण यहां पर पुतना को भी मां का स्थान दिया और उनको यह सुकृति कहां से प्राप्त हुआ, क्योंकि उसके पिछले जन्म में वो बलि महाराज की बहन थी और वामन देव आए थे तब उस समय उन्होंने ये विचार किया कि ये अगर मेरा बालक होता तो मैं इसको स्तनपान कराती, और भगवान ने वो जब उन्होंने भगवान के विषय में विचार किया तो उनके जीवन में सुकृति जाग गई और सुकृति उनका जमा हुआ और वो सुकृति उनको यहां पर खींच लाई। तो इस प्रकार दूसरा उदाहरण है कंस का। तो कंस जो थे उन्होंने अरिष्टासुर को भेजा था भगवान को मारने के लिए। अरिष्टे निहित दैत्य कृष्णेन अद्भुत कर्मणा कंसयाथाभ्य भगवान नारद देवदर्शनम। तो जब अरिष्टासुर का वध हुआ था तब उस समय नारद मुनि आए थे कंस को मिलने के लिए। तो नारद मुनि आकर कंस को उन्होंने कहा कि वास्तविकता में ये जो कृष्ण जो है कृष्ण और बलराम ये वास्तविकता में यशोदा मैया का पुत्र नहीं है, ये देवकी का ही है। और पूरा उन्होंने हिस्ट्री बता दिया कि कैसे पूरा जब यहां से जेल से मथुरा के जेल से जब लेकर जा रहे थे उस समय सारे सिपाही सोए हुए थे, वसुदेव ने यहां से वहां ट्रांसफर कर दिया, उनकी पुत्री को यहां लाया। तो पूरा उन्होंने जब कथा बताया तो आचार्यगण कहते हैं कि यहां पर कंस को नारद मुनि के मुख से जब हरि कथा श्रवण किया तो उनको सुकृति मिल गया और वो सुकृति से उन्होंने कृष्ण का दर्शन किया और वो दर्शन उनका अंतिम दर्शन था। तो वैसे यहां पर कंस को वैसे सुकृति जागने के कारण उनको भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। इसी प्रकार कालिया का भी, कालिया को भी अपने सुकृति प्राप्त होने के कारण उनके मस्तक पर भगवान ने अपने चरण कमल को रखा। और ऐसे कश्यानुभाव स्नेय देव विद्महे तवांग्री रेणु स्पर्शाधिकारा यदवांछीय श्री ललना चरत तपो विहाय कामन सुचिरम दृढ़व्रता। वो जो लक्ष्मी कण दृढ़ता पूर्वक तपस्या कर रहे वैसे लक्ष्मी को वो स्थान प्राप्त नहीं हुआ, और जबकि ऐसे कालिया ने ऐसा कौन सा सुकृति किया है। तो नाग पत्नी प्रार्थना कर रही है कि इन्होंने ऐसा कौन सा सुकृति प्राप्त किया है कि जिनके मस्तक पर आपने अपने चरण कमल को रखा। तवांगी रेणु स्पर्शाधिकार, इनके पास ऐसे अधिकार कहां से आया। तो वो जो कालिया उनके पास भी ऐसी सुकृति जाग गई। तो ये हुआ आसुरिक भावनाओं को सुकृति प्राप्त हुआ। तो कोई अगर असुर के रूप में भी रहता जब उसको सुकृति प्राप्त होता तो भगवान उनको कृपा बरसाने के लिए बड़े लालायित रहते हैं। तो जैसे कि तीसरे स्कंद में जहां पर विदुर जी कहते हैं सकरणम दुशासनम सौबल्लाम कुमांत्र पाखेन हत श्रीयायुषाम सुयोदनम सानुचरम सयानम भोग भोगनोरुम पूर्वियम न आनंद पश्यान। तो कहते हैं सकर्ण दुशासनम सौबालानम, यानी कि शकुनी करण और दुशासन कुमंत्र पाखेना, इन्होंने अनेक प्रकार के कुकार्य किए दुर्योधन को लेकर। तो यहां पर दुर्योधन को पुकारा गया सुयोधना, तो विदुर जी कहते सुयोधना। और सुयोधना सानुचरण वो अपने सारे अनुचरों के साथ, यानी कि उनके सारे उनके अनुचर जो थे वो सब के साथ वो रणभूमि में गिर पड़े। तो दुर्योधन की अवस्था क्या थी? तो कहते भंगनूर उनके जो जंगा जो थे उर्वयम, जंगा को उर्व कहते उर्वयम, उनके जो जंगा को तोड़कर उनको रणभूमि में गिरा दिया है। ऐसी अवस्था को जब कृष्ण देख रहे हैं तो क्या कहते? न आनंद पश्यान, उनको आनंद प्राप्ति नहीं हो रहा है। तो ऐसे भगवान वहां पर भी असंतुष्ट हुए। तो भले ही दुर्योधन ने ऐसे इस प्रकार के कुकर्म करने के बाद भी भगवान के हृदय में उनके प्रति ऐसी अनुकंपा की भावना थी। जबकि इस प्रकार जो असुरिक भावना होने के बाद भी भगवान उसको कैसे ना कैसे करके अज्ञात सुकृति के द्वारा भी उद्धार करना चाहते हैं। तो इस प्रकार स्पष्ट होता है कि किस प्रकार भगवान सारे जीव के प्रति अनुकंपा बरसाते हैं। तो इस तरह यहां पर जितने भी आसुरिक लोग हैं इन लोगों को सुकृति प्राप्त हुआ। जैसे मलेशिया में एक व्यक्ति था, बहुत बड़ा गुंडा था। तो वो क्या करता था कि अपने बंदूक दिखाकर लोगों से हफ्ता लेता था। तो जगह जगह जाकर वहां पर उनका नाम है तुलसीदास, तो वो सबसे हफ्ता लेता था। और अचानक उसे प्रभुपाद जी का किताब मिल गया, वो पढ़ लिया तो काफी बदलाव आ गया। और इतना बदलाव आ गया कि उन्होंने बंदूक वगैरह सब छोड़ दिया, हफ्ता लेना सब बंद कर दिया लोगों से। अब लोगों के पास जाता है तो किताब लेकर जाता है कि प्रभुपाद किताब लीजिए, और लोग घबरा कर कितना किताब लेना है, आज जितना भी लाते थे सब लेकर रख देते थे, ठीक है धन्यवाद। और इन्होंने क्या किए, पुलिस स्टेशन चला गया किताब लेकर। अब पुलिस स्टेशन में तो उनका बहुत बड़ा फाइल था, और उनको तुरंत पकड़ के जेल में डाल दिया। अब जेल में जब डाले तो जेल के अंदर जितने भी कैदी थे सबको उन्होंने भक्त बना दिया, और सुबह मंगल आरती से लेकर भागवतम क्लास तक सब प्रोग्राम शुरू हो गया। और हुआ क्या कि पुलिस वाले जो जेलर जो था वो भी हैरान हो गया कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि जो भी कुछ ब्रेड मिलता था सारे कैदी लोग पहला लाते थे इनके पास, तुलसीदास के पास, ये लीजिए और आप भोग लगाइए, तो भोग लगाते थे फिर खाते थे। तो सभी लोग हैरान होकर उनको दूसरे जेल में डाल दिया, और वो एकदम खतरनाक जेल जहां पर पूरी तरह तड़ीपार लोग हैं, उनके बीच में डाल दिया। अब जब उनके बीच में डाला तो उनको भी भक्त बना दिया, और उन लोग भी भक्त हो गए। और जब पुलिस वाले जब देखकर हैरान हो गए कि ये जेल के अंदर ज्यादा खतरनाक है लगता है बाहर से, तो उनको रिहाई कर दिया और उसको बाहर भेज दिया। और इस तरह उनके सारे जो गुनाह था वो माफ हो गया, और वो दीक्षा लेकर तुलसीदास बन गए उनका नाम, शायद जयपताका महाराज के शिष्य हैं मलेशिया में। इस तरह उनको सुकृति प्राप्त हुआ, जिस सुकृति से उनके सारे दुष्कर्म ही नष्ट हो गए, और जिससे वो बहुत अच्छे भक्त बन गए। तो कभी इस तरह भगवान कभी कभी ऐसे लोग को भी, जैसे अजामिल बहुत बड़े पापी थे, तो इतना पाप किए थे लेकिन उनको अज्ञात सुकृति के द्वारा, उन्होंने केवल अपने पुत्र को पुकारते हुए उन्होंने नारायण पुकारा, और उनको वैसा सुकृति प्राप्त होकर उनको नामाभास तक स्थिति पर पहुंच गया, जिससे उनको पुनः दूसरा मौका प्राप्त हुआ पुनः भक्ति करने का। इस तरह भगवान उनके ऊपर भी अनुकंपा बरसाए। फिर तीसरा उदाहरण आता है, जैसे कि जो व्यक्ति धार्मिक कार्यकलाप में ठीक से लगाए नहीं, जो अधर्म के मार्ग पर लगा हुआ, जैसे कि प्रकाशन सरस्वती, जो कि पूरी तरह मायावाद सिद्धांत में लगा हुआ था, मगर जब श्री चैतन्य महाप्रभु जब आए उनसे एक महाराष्ट्र ब्राह्मण के घर पर, तो आते ही उन्होंने सीधे जहां पर पैर धुआ जाता उस स्थान पर जाकर बैठ गए। तो प्रकाशानंद सरस्वती ने यह जब दृश्य देखा चैतन्य महाप्रभु के, तो उनके हृदय में एक अनुकंपा बरसी और तुरंत वो अपने प्रकाशानंद हाथे धरे बसीला सब मध्य सम्मान करीला। उन्होंने अपने हाथ से श्री चैतन्य महाप्रभु को उठाया और सभा के बीच में उसको बिठाकर, अपने साथ बिठाकर उनका सम्मान दिया, जिससे उनको सुकृति मिला, जिस सुकृति से प्रकाशानंद सरस्वती भक्त बन गए। इसी प्रकार उदाहरण आता है सार्वभौमा भट्टाचार्य का, जो कि जिनके जो संबंधी जो थे वो गोपीनाथ पटनायक थे, तो गोपीनाथ जो उनके संबंधी होने के कारण प्रभु कहे तुम्ही भक्त तुम संग हईता जगन्नाथ कृपा ही आर होइला भला मध्य। तो कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु गोपीनाथ को, जगन्नाथ जी ने सार्वभौमा पर कृपा इसलिए बताया क्योंकि वो तुम्हारे संबंधी हैं, और इस तरह उनको वो सुकृति के द्वारा उनको श्री चैतन्य महाप्रभु की अहेतु की कृपा प्राप्त हुई। तो इस तरह यहां पर यह महत्वपूर्ण है, जब व्यक्ति बहु जन्म ताकीला भाग्य विषय छाड़ी है वैराग्य, जब व्यक्ति बहुत जन्म जन्मांतर तक जब सुकृति अर्जित करता है, जिस सुकृति से एशाम तो अंतगतम पापम जनानम पुण्य कर्मणाम, जब उनका पुण्य उदय होता है तब भजन्ते दृढ़व्रता। इस तरह यहाँ पर अम्बरीश महाराज उन्होंने अपने सर्वान कामन शनेर जहु, अपने जीवन में सारी कामनाओं को क्रमानुसार धीरे धीरे परित्याग किया, और साथ में तपस्या करते हुए उन्होंने परित्याग किया। कैसे तपस्या? तो भक्ति योगे न तप, वो जो भक्ति योग का जो तपस्या है उसको करते हुए उन्होंने ऐसे कामनाओं को परित्याग कर हरि प्रीणन भगवान को प्रसन्न किया, और इस तरह उनके भक्ति में एकाग्रता आई। एके है कुरुनंदना। तो यहां पर विषयों का जब तक व्यक्ति परित्याग नहीं करेगा तब तक वो भगवान के प्रति उसकी जो भक्ति जो एकाग्रता है तब तक स्थिर नहीं होगी। ये श्लोक इस यहां पर वर्णन किया गया है। जैसे दशम स्कंद में जहां पर वर्णन आता है कि दामोदर लीला में जब कृष्ण जब मटकी तोड़कर जब भाग रहे थे तब यशोदा मैया पीछे लग रही थी, तो यशोदा मैया भागते भागते अंततः गतवा उनको पकड़ लिया। तो आचार्यगण कहते हैं कि यशोदा मैया ने क्यों पकड़ा? क्योंकि यशोदा मैया जो थी अनघ निष्पाप थी। अब कृष्ण को पकड़ने वाला और एक व्यक्ति था उनके पीछे भागने के लिए, और दशम स्कंद में वर्णन आता है, और वो था कालयवन। कालयवन इतना सिद्धि प्राप्त किया था शिवजी को प्रसन्न करके, और कृष्ण के पीछे लगा था और बड़े रफ्तार से भाग रहा था कालयवन कृष्ण को पकड़ने के लिए, और कृष्ण केवल चलते हुए जा रहे थे, और इन्हें इतना क्रोध आया कि वो रण छोड़ करके पुकार रहा था, और कृष्ण को बड़ा मजा आ रहा था, मगर तत्पर भी कृष्ण को पकड़ नहीं पाया। तो क्यों नहीं पकड़ पाया? तो वर्णन करते हैं क्योंकि जो काल यवन जो था वो पूरी तरह पाप से भरा था, और काल यवन पाप के बोझ से भरा रहने के कारण कृष्ण को नहीं पकड़ पाया, जबकि यशोदा मैया जो कि निष्पाप थी अनघ थी इसलिए उन्होंने बड़े आसानी से कृष्ण को पकड़ लिया। तो जब विषयों को हृदय में, विषयों की जो चिंतन जब हृदय में रहता है तब भक्ति के मार्ग में दौड़ लगाना बहुत भारी होता है, तो वजन ज्यादा बढ़ जाता है। तो जब तक उस विषयों का जब तक व्यक्ति परित्याग नहीं करता, जितना व्यक्ति विषयों का परित्याग करता उतना ही भक्ति में भागने के लिए जो रास्ता है वो और सरल हो जाता है। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र उस व्यक्ति के लिए बड़े आसानी से जप हो जाता है जो विषयों से निवृत्त है, उसके लिए माला बहुत हल्का लगेगा। लेकिन जो व्यक्ति विषयों से भरा है तो उनके लिए 100 ग्राम का माला भी 100 किलो के बराबर हो जाएगा। तो वैसे यहां पर मुख्यतः जो जोर जो दिया गया है कि किस प्रकार भक्ति में व्यक्ति कैसे बड़े रफ्तार से भाग सकता है, व्यक्ति विषयों का परित्याग करके। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। कुछ प्रश्न, कुछ जिज्ञासा या कुछ कमेंट हो तो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।
छोटा